स्वम खलु कीर्ति। पुनर्नवा में एक रोचक प्रसंग है जिसमें कविता और जीवन के संबंध पर चर्चा चल पड़ती है। चर्चा में भाग लेने वाले तीन व्यक्ति चरित्र हैं, 14 वर्ष की बालिका मृणाल मंजरी, उसके धर्म पिता देवरात जो शास्त्र के पंडित भी हैं और कला मर्मज्ञ भी, तथा सहज बुद्धि के धनी लेकिन अपने आप को अट्टड़ गवार कहने वाले सुमेर काका। देवरात समझाते हैं कि कविता भगवती महामाया की इच्छा शक्ति है, व्यवहार जगत उनकी क्रिया शक्ति का विलास है। इच्छा शक्ति कल्प लोक का निर्माण कर सकती है, क्रिया शक्ति केवल सृष्ट पदार्थों तक सीमित है। ऐसा लगता है कि उपपन्न कवि चाहे तो कविता के कल्प लोक में फूल सी सुकुमार बालिका से वज्र कठोर महिष का निर्दलन करवा सकता है, पर व्यवहार जगत में यह संभव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि कविता निरर्थक है, कविता महामाया की इच्छा शक्ति का विलास है, अर्थ भारहीन, सत्वार्थ मात्र। पृष्ठ संख्या 40। मृणाल मंजरी इसका अर्थ सुमेर काका से पूछती है और काका अपने सहज अंदाज में कहते हैं, देख रे तेरा बाप शास्त्र का भारी पंडित है, काव्य का, संगीत का, चित्र का, मूर्ति का सहृदय पारखी है, मगर मैं उसकी कमजोरी जान गया हूँ। वह इन बातों को तैयार माल की तरह देखता है, सुनार जैसे अंगूठी बनाकर ले आता है तो ग्राहक जैसे देखता है उसी प्रकार, मगर ज्ञान या रस तैयार माल की तरह नहीं होता, वे इतिहास से पलते हैं और इतिहास को बनाते हैं। उसने तुझे कविता और व्यवहार का जो भेद बताया है ना, वह उसी तैयार माल का दाम आंकने वाली बुद्धि से। पृष्ठ संख्या 45। कथा कृति में किसी पात्र के कथन को लेखक का अपना वक्तव्य बतलाना सब समय ठीक नहीं होता, फिर भी द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों से प्राप्त अन्य प्रमाणों के प्रकाश में बिना हिचक के यह कहा जा सकता है कि सुमेर काका का कथन ही स्वयं उनका वक्तव्य है। देवरात का कथन शास्त्र पक्ष है, इसलिए पूर्व पक्ष। मध्यकालीन बोध का स्वरूप में अलंकार शास्त्र की सामान्य प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, अलंकार शास्त्रों में भी लगता है कि काव्य की रचना प्रक्रिया में जो आनंद है उस ओर कम ध्यान दिया गया है। यह कहना है कि कवि रचना करने के बाद सहृदय रूप में ही काव्य का रसा स्वाद करता है। कविता की स्थितिशील कला वस्तु स्टैटिक ऑब्जेक्ट मान लेने के समान है, उनकी रचना प्रक्रिया में जो गतिशील पक्ष डायनेमिक प्रोसेस का आनंद है वह उपेक्षित हो जाता है। यह भी कविता को तैयार माल फिनिश्ड प्रोडक्ट समझने की ही वृत्ति है। पृष्ठ संख्या 65। इसी क्रम में वे आगे कहते भी हैं कि उत्पादिता के आनंद को भोक्ता के आनंद के सामने नगण्य मान लेने की प्रवृत्ति मध्यकालीन पतनशीलता का प्रभाव है। वस्तुतः मध्यकाल के अलंकार शास्त्री काव्य को तैयार माल के रूप में देखने के अभ्यस्त इसलिए हो गए थे कि उनका संबंध उत्पादक वर्ग से कट गया था और वे क्रमशः उपभोक्ता वर्ग के हितों और रुचियों से जुड़ गए थे। इस सामाजिक पृष्ठभूमि को हिंदी के रीति काव्य के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास नामक ग्रंथ में वे कहते हैं, उस समय आर्थिक दृष्टि से दो श्रेणियां हो गई, और एक तो उत्पादक वर्ग जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई लोहार कहार जुलाहा इत्यादि थी, और दूसरा दल भोक्ता राजा रईस नवाब आदि या भोक्तृत्व का मददगार था। मुगल शासक के अंतिम दिनों में भारतीय समाज के ही ये दो आर्थिक वर्ग थे, राजा सामंत मनस बदार आदि भोक्ता वर्ग और कृषक और श्रमिकों का उत्पादक वर्ग। इन दो वर्गों के मध्य में कवियों चित्रकारों संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोविनोदन करके जीविका निर्वाह करता था। पृष्ठ संख्या 81। इस कथन से स्पष्ट है कि भोक्ता वर्ग से जुड़ने के कारण ही कवियों और कलावंतों का वर्ग काव्य और कला को उपभोग की वस्तु समझने का अभ्यस्त हो गया था। काव्य को तैयार माल समझना इस उपभोक्ता दृष्टि का ही परिणाम है। यह एक प्रकार से काव्य कीर्ति का रीइफिकेशन या वस्तुकरण है, जिसमें काव्य कीर्ति अपनी गतर्वता और जीवंतता खोलकर एक जड़ और स्थिर वस्तु बन जाती है। द्विवेदी जी काव्य कृति के प्रति इस उपभोक्ता दृष्टि को अस्वीकार करके साहित्य में उत्पादक दृष्टि की हिमायत करते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में उनके विचार मार्क्सवादी साहित्य चिंतक वाल्टर बेन्यामिन के उन विचारों से काफी मिलते हैं, जिनका विवेचन द आथर एज प्रोड्यूसर शीर्षक लेखक लेख में किया गया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि द्विवेदी जी साहित्य चर्चा के प्रसंग में अपनी ओर से साहित्य के रस और रसास्वादन का प्रश्न न उठाकर साहित्य का मर्म की बात करते हैं। साहित्य और रसास्वाद से उपभोग की व्यंजना होती है और द्विवेदी जी हर चंद इस अवधारणा से बचे रहना चाहते हैं। साहित्य शास्त्र पर उन्होंने अपने समकालीन पंडितों की तुलना में कम ही लिखा है, लेकिन जब भी अवसर आया है उन्होंने भरसक संस्कृत की परिभाषिक शब्दावली से परहेज ही किया है। एक पुस्तक है साहित्य का साथी, जिसे आगे चलकर साहित्य का सहचर नाम से प्रकाशित किया। एक तरह से यह साथी और सहचर पुराने सहृदय का ही सगोतिया है। फिर भी द्विवेदी जी ने साथी को ही चुना, और जो निश्चय ही केवल शब्द भेद नहीं है। दूसरी पुस्तिका है साहित्य का मर्म, लखनऊ विश्वविद्यालय में दिए गए 3 भाषण, जिसमें जानबूझकर साहित्य और आत्मा शब्द से बचा गया है। यह वही आत्मा है जिस पर संस्कृत में शब्द शताब्दियों बहस होती रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा के साथ एक निश्चित आध्यात्मिक अनुषंग जुड़ा है, बल्कि वह आध्यात्मिक चिंतन प्रणाली की ही एक अवधारणा है, जिनका अभिष्ट साहित्य में मानव सत्य की प्रतिष्ठा है। द्विवेदी जी भला इस आध्यात्मिक अवधारणा को स्वीकार कर अपनी इस बात को कैसे कह सकते थे। स्पष्टतः साहित्य का मर्म का रहस्य यही है। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने पुनर्नवा में अपनी बात कहने के लिए शास्त्रज्ञ और कला मर्मज्ञ देवरात को नहीं, बल्कि सहज ज्ञान संपन्न एक अट्टगवार किसान सुमेर काका को प्रवक्ता के रूप में चुना। जब वे कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो उनके सामने स्पष्टतः यही मनुष्य होता है, कोई अमूर्त अवधारणा नहीं। लिखते हैं, हम लोग नेतृत्व के ग्रंथ न पढ़ते तो बात नहीं, सो बात नहीं, किंतु जब हम देखते हैं कि ग्रंथ पढ़ने के कारण हमारे घरों के निकट जो चमार, धीवर, कोरी, कुम्हार आदि लोग रहते हैं, उनका पूरा परिचय पाने के लिए हमारे हृदयों में जरा भी उत्सुकता नहीं उत्पन्न होती, तब अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि पुस्तकों के संबंध में हमें कितना अंधविश्वास हो गया है। पुस्तकों को हम कितना बड़ा समझते हैं और पुस्तकें जिनकी छाया है उनको कितना तुच्छ मानते हैं। अशोक के फूल नवा संस्करण 1967 पृष्ठ संख्या 181। यहाँ हम आसानी से नेतृत्व के स्थान पर साहित्य भी पढ़ सकते हैं। साहित्य की चर्चा करते समय द्विवेदी जी के सम्मुख सदैव हमारे घरों के निकट के चमार, धीवर, कोरी, कुम्हार आदि होते हैं, जिन्हें वे गढ़ देवता कहते हैं, और साहित्य के लक्ष्य के रूप में जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य का हित होता है। साहित्य को द्विवेदी जी इसी मनुष्य से मापते हैं। मनुष्य के इसी मानदंड को ध्यान में रखकर वे घोषणा करते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच नहीं होता। पृष्ठ संख्या 166। यह कथन कोरा वाकजाल है या ठोस प्रतिमान, इसका निश्चय करने के लिए द्विवेदी जी के कबीर का स्मरण कर लेना काफी है। यह सही है कि द्विवेदी जी से पहले आचार्य शुक्ल के सम्मुख भी साहित्य के मूल्यों की पीठिका में सामान्य मनुष्य ही था, जैसा कि किसी न किसी संकेत किया है, किंतु यह स्पष्ट होना चाहिए कि बहुत सी बातों में समान होते हुए भी द्विवेदी जी का सामान्य मनुष्य शुक्ल जी के सामान्य मनुष्य से भिन्न है। इस अंतर को शुक्ल जी के तुलसीदास और द्विवेदी जी के कबीर के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य के प्रतिमान के रूप में मध्ययुगीन संत ही दोनों आचार्यों के काम में है। वस्तुतः तुलसी और कबीर काम्य मानव प्रतिमा के आधार मात्र थे। स्वयं मानव प्रतिमा के निर्माण में आधुनिक युग के वैज्ञानिक ऐहिक और मानववादी विचारों की भूमिका कहीं अधिक थी। फिर भी द्विवेदी जी का मानव जिस हद तक जाति धर्म निर्विशेष और समाजवादी समाज के मानव के निकट था, तुलसीदास शुक्ल जी का मानव कदाचित न था। वैसे साम्यवाद और समाजवाद के विषय में आशंकाएं दोनों को हैं, शुक्ल जी को ज्यादा, द्विवेदी जी को कम। प्रगतिवाद का नाम शुक्ल जी नहीं लेते, पर संकेत से अपने प्रिय कवि पंत को उससे अलग रहने की सलाह देते हैं। द्विवेदी जी प्रगतिवाद और प्रगतिशील दोनों आंदोलन की स्पष्ट चर्चा करते हैं, उसे बहुत महान उद्देश्य से चालित मानते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि इसकी संभावनाएं अधिक हैं। उन्हें चिंता है कि भक्ति आंदोलन के समान इस आंदोलन में भी एक प्रकार की सांप्रदायिकता के उगने के चिन्ह दिखने लगे हैं। स्पष्टतः इस चिंता में एक प्रकार की आत्मीयता है। इस प्रकार द्विवेदी जी अपने विचारों में शुक्ल जी की अपेक्षा प्रगतिशील साहित्य की धारा के ज्यादा निकट प्रतीत होते हैं। फिर भी जहाँ तक साहित्य में ठोस यथार्थ अथवा वास्तविकता के महत्व का प्रश्न है, द्विवेदी जी कल्पनाशीलता और शुक्ल जी से अधिक महत्व देते जान पड़ते हैं। इस तरह मानव मन के भीतर और बाहर के सापेक्षिक महत्व के बारे में भी जहां शुक्ल जी अधिक बाह्यार्थवादी हैं, द्विवेदी जी भीतर को बाहर के समान ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए शुक्ल जी का बुद्धिवाद जहाँ रहस्य का आभास देने वाली रचनाओं को एक सिरे से नकार देता है, द्विवेदी जी उस अतर्क्य रहस्य को भी सामाजिक संदर्भ में परखते हुए सार्थक मानने लगे हैं। किंतु सामान्य मनुष्य की प्रतिभा को लेकर शुक्ल जी से द्विवेदी जी का सबसे ज्यादा मतभेद सामान्यता अथवा साधारणता को लेकर है। व्यक्ति वैचित्र्यवाद द्विवेदी जी को भी शुक्ल जी के समान ही सामान्य मनुष्य के पथ से विचलन के रूप में प्रतीत होता है, किंतु शुक्ल जी के विपरीत उसके लिए उसके मन में सहानुभूति का भाव है। जैसे कि किसी असामान्य आचार विचार के लिए होता है, एबनॉर्मल के वजन पर द्विवेदी जी इसे अवनर्मिल कहते हैं और एक मनोचिकित्सक के समान ही वे किसी अनर्मिल को तिरस्कृत करने की अपेक्षा सहानुभूति चिकित्सा का विषय मानते हैं। संभवतः इसलिए द्विवेदी जी नॉर्म अथवा सामान्य मर्यादा को तोड़ने वाले किसी कवि अथवा लेखक को अपनी सहज सहानुभूति देते हैं। कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल के सामान्य मनुष्य की धारणा यदि उन्हें मर्यादावाद की दिशा में ले जाती है, तो द्विवेदी जी का सामान्य मनुष्य उन्हें जड़ मर्यादाओं को तोड़ने वाले विद्रोह की ओर ले जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सामान्य मनुष्य की यह परिकल्पना साहित्य की एक अभिन्न धारणा को जन्म देती है। यदि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य है, तो मनुष्य के समान साहित्य भी स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। यदि मनुष्य की कोई स्थिर परिभाषा नहीं हो सकती, तो साहित्य की ही क्यों हो। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अन्य आलोचकों की तरह कविता क्या है अथवा साहित्य क्या है जैसा लेख कभी न लिखा। साहित्य यदि तैयार माल नहीं है, तो साहित्य की कोई तैयार परिभाषा भी नहीं हो सकती। साहित्य इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक अवधारणा है, इसलिए साहित्य के बारे में यह कहा गया है कि वह इतिहास से पलता है। लेकिन इसके साथ ही द्विवेदी जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि साहित्य इतिहास को बनाता है, साहित्य का मर्म में इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जीवन के संपूर्ण सार रसों से जो काव्य पुष्ट हुआ है वह जीवन की भांति ही क्रियाशील सर्जक और निरंतर विकासमान वस्तु है। यह वांछनीय है, काव्य सर्जक है, वह मनुष्य की दुनिया में नए भावों की सृष्टि करके विधाता के भाव जगत में वृद्धि करता आ रहा है। विचार प्रवाह पृष्ठ संख्या 121 से 132। तात्पर्य यह है कि साहित्य यदि इतिहास को बनाता है तो किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा नहीं बल्कि अपने सर्जन धर्म के द्वारा। सृजनशीलता ही साहित्य की इतिहास निर्मात्री शक्ति है। इस सृजनशीलता की पहचान इतिहास के संदर्भ में होती है। इस दृष्टि से साहित्य की पूर्ववर्ती मान्यताओं की समीक्षा करते हुए द्विवेदी जी ने निरंतर यह दिखाने का प्रयास किया है कि उन पर वर्ग विशेष की विचारधारा का गहरा असर है। साहित्य का मर्म के प्रथम व्याख्यान में उन्होंने कहा है, अलंकार ग्रंथों और उनकी परवर्ती टीकाओं में काव्य की परिभाषा की व्याख्या करने के बाद टीकाकार लोग प्रायः एक ही प्रकार का तर्क उठाते हैं। यदि यह परिभाषा स्वीकार कर ली गई तो बहुत सी प्राचीन कविताओं को हम कविता नहीं कह सकते। उत्तर में कहलाया जाता है, यह तो हम चाहते ही हैं इष्टापति की जो रचनाएं इस परिभाषा के बाहर पड़ जाएं, उन्हें कविता नहीं कहें। फिर इसके उत्तर में कहलाया जाता है, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आप जिस बात को मानना चाहते हैं उनके मानने से शिष्ट संप्रदाय का विरोध होगा, शिष्ट संप्रदाय विरोधार्थ इत्यादि। इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि पुराना भारतीय सहृदय शिष्ट परंपरा के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि पुराने संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग आलोचना शास्त्र की बहु विघोषित मर्यादा से थोड़ा विच्छिन्न हो जाता है। विचार प्रवाह पृष्ठ संख्या 109। यह शिष्ट संप्रदाय प्रभुत्वशाली वर्ग का वह बुद्धिजीवी भाग है जो साहित्यिक मान्यताओं के द्वारा पूरे समाज पर उस वर्ग की विचारधारा का प्रभुत्व कायम करता है। इसलिए द्विवेदी जी ने बड़े विस्तार से काव्य शास्त्रेतर प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण पर नागरक की दिनचर्या, विदग्ध गोष्ठियों के क्रियाकलाप तथा सरस्वती विहार आदि की गतिविधियों की चर्चा की है। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य की मान्यताएं प्रभुत्वशाली विचारधारा का ही एक अंग है। इससे यह निष्कर्ष स्वभावतः निकलता है कि साहित्यिक मान्यताओं और साहित्य की परिभाषाओं के विरुद्ध संघर्ष वस्तुतः एक कठिन विचाराधात्मक संघर्ष है। स्वयं ही हिंदी के साहित्य के इतिहास में इस विचारधारात्मक संघर्ष को योगियों और संतों के साहित्यिक मूल्यांकन में स्पष्टतः देखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने सिद्धों और योगियों की रचनाओं को साहित्य न मानते हुए लिखा है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। लगभग इसी तर्क को निर्गुण संतों की रचनाओं पर लागू करते हुए वे आगे कहते हैं कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। ऊपर ऊपर से देखने पर साहित्य की यह कसौटी एकदम साहित्यिक और शुद्ध मालूम होती है, किंतु कुछ देर ही में इस साहित्यिकता का सांस्कृतिक और सामाजिक आधार अनावृत्त होकर सामने आ जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि संस्कृत बुद्धि, संस्कृत सहृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। योगियों और निर्गुण संतों में संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास क्यों नहीं हो सका? इसका कारण संभवतः शुक्ल जी के इस कथन में है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। इस प्रकार साहित्य की कसौटी का आधार सामाजिक और सांस्कृतिक है। जो सुसंस्कृत है उसकी गाली भी साहित्यिक है, लेकिन जो असंस्कृत है उसकी डांट फटकार भी असाहित्यिक है। तुलसीदास यदि अलख जागने वालों को नीच कहे तो वह काव्य है, लेकिन कबीर का यह कथन अशिष्ट गाली है। पाड़े कौन कुमति तोहे लागी, तू राम न जपही अभागी। इस मान्यता के चलते एक की दार्शनिक उक्तियां काव्य है और दूसरे की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र। क्या इसलिए कि एक प्रभुत्व वर्ग की संस्कृति के पक्ष में बोलता है और दूसरा उस संस्कृति का विरोध करता है? द्विवेदी जी की सर्जक दृष्टि शिष्ट संप्रदाय की इस साहित्यिक कसौटी के विरुद्ध विद्रोह है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में इस कसौटी का प्रतिवाद करते हुए वे कहते हैं, इस अंधकार युग को प्रकाशित करने के योग्य जो भी चिंगारी मिल जाए उसे सावधानी से जिलाए रखना कर्तव्य है, क्योंकि वह बहुत बड़े आलोक की संभावना लेकर आई होती है। उसके पेट में केवल उस युग के रसिक हृदय की धड़कन ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संयत और सुचिंतित वाक पाटव की ही नहीं, बल्कि उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने की क्षमता छिपी होती है। पृष्ठ संख्या 27। यह कथन केवल साहित्य की एक संकीर्ण समझ के विपरीत व्यापक दृष्टि का ही परिचायक नहीं है, बल्कि यहाँ स्पष्टतः साहित्य की उस कसौटी का प्रत्याख्यान किया गया है जो किसी कीर्ति में केवल रसिक हृदय की धड़कन देखना चाहती है और सुशिक्षित चित्त के संयत और सुचिंतित वाक्पाटों के आधार पर साहित्यिक कीर्तियों को साहित्यिकता का प्रमाण पत्र देती है। इस स्थित सुशिक्षित रुचि के विरुद्ध द्विवेदी जी एक सर्जक और इतिहासकार के नाते संभावना की तलाश करते हैं और यह देखने का आग्रह करते हैं कि किसी कीर्ति में उस युग के संपूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने की क्षमता किस हद तक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी का यह संपूर्ण मनुष्य साहित्य शास्त्र के रसिक से अधिक बड़ा, अधिक सार्थक और कहीं अधिक प्रासंगिक है। इसलिए द्विवेदी जी अलंकार शास्त्र के ग्रंथों से बाहर निकलकर स्वयं सृजनात्मक साहित्य के आधार पर साहित्य के सिद्धांतों की खोज के पक्षपाती हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप में वाल्मीकि के अमर अनुष्टुप मान निषाद प्रतिष्ठाम के प्रति महत्व की चर्चा करते हुए विकिंचित खेद के साथ कहते हैं, भारतीय परंपरा में इस घटना को बहुत महत्व दिया गया है, पर यह मानकर भी कि इस घटना से प्रथम काव्य का आविर्भाव हुआ, इसे उस प्रकार की रस व्याख्या का आधार नहीं बनाया गया जैसा भरत के प्रसिद्ध सूत्र को। अगर इसे आधार बनाया गया होता तो कदाचित मध्ययुग के आलोचक अधिक स्पष्टता के साथ सौंदर्य बोध की रचनात्मक प्रक्रिया और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के स्वरूप को हृदयगम कर सकते। पृष्ठ संख्या 106। इस चिंतन में आदि काव्य की क्रौंच वध वाली घटना की उपेक्षा का कारण यह है कि पर्वतीय अलंकार शास्त्रियों की रुचि सौंदर्य बोध की रचना प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उसके आस्वाद और रसानुभूति में थी। इसलिए श्लोक और श्लोक बनने की चर्चा तो बहुत हुई, किंतु उसका केंद्र सहृदय ही था। इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा गया कि आदि कवि ने अपने श्लोक को श्लोक का रूप किस प्रकार दिया। द्विवेदी जी ने संक्षेप में उस प्रक्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा है कि वाल्मीकि ने नेता की ही खोज की थी, ऐसे नरचंद्रमा की जिसमें मनुष्य की समग्र लक्ष्मी का निवास हो। उन्हें उन नेताओं के किसी ऐसे स्थायी भाव की खोज नहीं थी जो विभावनानुभाव संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो सके। वे मनुष्य के संपूर्ण और आदर्श रूप के जिज्ञासु थे। पृष्ठ संख्या 107 से 108। यहाँ भी द्विवेदी जी की दृष्टि किसी स्थायी भाव की खोज में नहीं अटकी, बल्कि वे वाल्मीकि के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य की तलाश में ही तत्पर हैं। वस्तुतः रचना प्रक्रिया वाली सृजनात्मक दृष्टि का लक्ष्य मनुष्य ही होता है और काव्य में उसी के सम्मूर्तन की समस्या कवि की मुख्य समस्या होती है। आदि कवि के सृजनात्मक प्रयास के द्वारा द्विवेदी जी ने एक बार फिर साहित्य चिंतन की मुख्य दिशा की ओर संकेत किया है। इस कीर्ति दृष्टि में स्वभावतः तैयार माल की उपेक्षा सर्जक के प्रयास की परीक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान निश्चित करते हुए द्विवेदी जी रविन्द्रनाथ का वह गीत उद्धृत करते हैं, जिसकी पहली दो पंक्तियां हैं, जीवने यत पूजा हलो नसारा, जानी है जानी ताओ हय निहारा। अर्थात जीवन में जो पूजाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, मैं ठीक जानता हूं कि वे भी खो नहीं गई हैं। यह कवि के प्रति न तो अतिरिक्त सहानुभूति है, न आलोचक की उदारता या अनुकंपा ही। यह सृजन कर्म की सार्थकता की सच्ची पहचान है। विचित्र बात है कि साहित्य समीक्षा में इस कीर्ति दृष्टि की हिमायत करते हुए भी द्विवेदी जी स्वयं अपनी कीर्ति के लिए इस आधार पर कोई छूट नहीं लेते। बाणभट्ट की आत्मकथा की समाप्ति पर द्विवेदी जी के अभिन्न पंडित व्योम के शास्त्री यह टिप्पणी करना नहीं भूलते कि कादंबरी में प्रेम की अभिव्यक्ति में एक प्रकार की तृप्त भावना है, परंतु इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना गूढ़ और अदृप्त भावना से प्रकट हुई है। ऐसा जान पड़ता है कि एक स्त्री जनोचित्त लज्जा सर्वत्र उस अभिव्यक्ति में बाधा दे रही है। निश्चय ही टिप्पणी का एक प्रयोजन पाठकों को संकेत से यह बता देना है कि यह बाणभट्ट की कीर्ति नहीं बल्कि आधुनिक मानस की सृष्टि है। किंतु इस संकेत के अलावा क्या रचनाकार स्वयं यह स्वीकार नहीं करता कि बाणभट्ट का प्रेम वर्णन एक स्त्री जनोचित्त लज्जा के कारण बाधित हो गया है और इसलिए उसकी अभिव्यक्ति अदृप्त रह गई है। यह दीगर बात है कि कुछ लोग इसे गुण भी मान सकते हैं, किंतु क्या यह तथ्य नहीं कि उस तथाकथित लज्जा से जो वस्तुतः कुंठा का ही सृष्ट रूप है, स्वयं बाणभट्ट का चरित्र काफी दब गया है। निर्णय जिस रूप में भी किया जाए, तथ्य यही है कि एक सजग रचनाकार ने अपनी रचना प्रक्रिया का सूत्र ईमानदारी से खोल कर रख दिया है। इसी प्रकार पुनर्नवा में पंडित व्योम के शास्त्री जी की जो भूमिका न जा सकी, उसका परिहार बाद में एक पत्र के द्वारा करते हुए द्विवेदी जी ने अपने उन्हीं अभिन्न के जरिए कहला दिया है कि कालिदास को आप इस ग्रंथ में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं कर सके। यह सही है कि इस दुर्बलता का एक कारण भी बताया गया है, किंतु कमजोरी आखिर कमजोरी ही होती है और इतना भी क्या कम है कि रचनाकार स्वयं उसे स्वीकार करता है। अनामदास का पोथा के अंत में भी यह स्वीकार कर लिया गया है कि छांदोग्य के उसस्ती इस उपन्यास में अपना अक्कड़ और फक्कड़ रूप एकदम खो बैठे हैं। वस्तुतः रचना में निर्दिष्ट ये असंगतियां रचना को समझने की दिशा में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि जो पेशेवर समीक्षकों की समीक्षाओं से प्रायः नहीं मिलती। आत्म समीक्षा के रूप में द्विवेदी जी की जिस कीर्ति दृष्टि का परिचय मिलता है, उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उनकी क्रियाशीलता, वे साहित्य के बारे में बात करते हुए साहित्य की रचना करते हैं। उनके हाथों शस्त्र भी साहित्य बन जाता है और समीक्षा भी सृजना। इस प्रक्रिया में भी अक्सर उनका फक्कड़ रूप प्रकट हो जाता है। किसी छंद के साथ वे इस तरह खेलते हैं जैसे अर्थ कीड़ा में उन्हें एक मजा मिल रहा हो। यह अर्थ कीड़ा पंडितों की नजर में उन्हें कभी कभी गैर जिम्मेदार भी बना देती है, फिर भी इसकी परवाह किए बिना वे उस कीर्ति के साथ खेलना नहीं छोड़ देते। इस वृत्ति का सर्वोत्तम रूप मेघदूत एक पुरानी कहानी में मिलता है। टीका भी कितनी सृजनात्मक और रोचक हो सकती है, उसका आदर्श है मेघदूत, एक पुरानी कहानी। वस्तुतः यह एक पुनः सृष्टि है। कालिदास के मेघदूत के आधार पर अपने मेघदूत की रचना प्रकृति में यह पुरानी कहानी भी उनके ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न नहीं है, इसके सहज ही उपन्यास के रूप में पढ़ा जा सकता है। गप मारने की चीर परिचित कला यहाँ भी सक्रिय है। शुरुआत ही इस अटकलबाजी से होती है कि यक्ष कौन था और कुबेर ने उसे देश निकाले की सजा क्यों दी और क्यों कोई सजा क्यों नहीं। कुबेर चाहते तो जुर्माना कर सकते थे, पर वह दंड बेकार होता क्योंकि कल्प वृक्ष से वह जो चाहता वह मांग लेता और जुर्माना चुका देता। जेल खाने शायद वहां नहीं थे। उस नगरी में एकमात्र बंधन प्रिया का बाहुपास था, पर कुबेर ने इसे इस दंड से कोई विशेष फायदा नहीं देखा। असल में देश निकाले से पढ़कर और कोई दंड उस देश में हो ही नहीं सकता था, मगर यक्ष कुबेर को चाहे जितना भी अदना नौकर क्यों ना हो था। देव योनि का जीव, निधियां उसके अधिकार में थी, सिद्धियां उसके लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत थी, इसलिए सिर्फ राजा देश से यदि दंड दिया जाता तो यक्ष कुछ न कुछ ऐसा अवश्य कर लेता जिससे वह अलका के बाहर भी आराम से रह सकता था। हजार हो, देव योनि में जन्मा था तो कुबेर ने उसे सजा नहीं दी, श्राप दिया। देवता ही देवता को मारना जानता है, लोहा ही लोहे को काट सकता है। प्रेमजन्य प्रमाद साहित्य में और भी हुए। यक्ष ने जो गलत गफलत की वैसा ही और भी कई बार की गई। कहते हैं खान खाना अब्दुल रहीम का एक साधारण भृत्य प्रिया प्रेम के कर्तव्य बुद्धि से इतना हीन हो गया कि 6 महीने तक काम पर ही नहीं गया। गया तो डरता हुआ और जीवन की सबसे कठिन सजा सुनने की आशंका लिए हुए। उसकी प्रिया कविता लेख लेती है, उसे पुरजे पर एक बरवे छंद लिख दिया था। इस पर कवि रहीम ने भृत्य का अपराध क्षमा कर दिया था और पुरस्कार भी दिया था। वे मनुष्य थे, पर कुबेर तो देवता थे। मनुष्य क्षमा कर सकता है, देवता नहीं कर सकता। मनुष्य हृदय से लाचार है, देवता नियम का कठोर प्रवर्तीयता है। मनुष्य नियम से विचलित हो जाता है, पर देवता की कुटिल भ्रुकुटी नियम की निरंतर रखवाली करती रहती है। मनुष्य इसलिए बड़ा होता है कि वह गलती कर सकता है, देवता इसलिए बड़ा है कि वह नियम का नियंता है। तो कुबेर ने उसे श्राप दे दिया। यह इतनी लंबी व्याख्या सिर्फ एक शब्द की है, श्राप की। विस्तार अवश्य है, किंतु कोई कह नहीं सकता कि अमूल और या अनपेक्षित है। वैसे ग्रंथ के अंत में भाष्य शिरोमणि मल्लिका मल्लीनाथ को नमस्कार करते हुए टीकाकार ने इतनी सी छूट लेने के लिए क्षमा मांग ली है कि कहीं कहीं मूल को ईषत छोड़ दिया है और विदग्ध जनों की रुचि का ख्याल कर अनपेक्षित भी कह दिया है। फिर भी कुल मिलाकर यह श्राप की व्याख्या ही जो अतिरिक्त है वह है एक कीर्ति की कल्प सृष्टि है। इस सृजन में गप भी है, खिलवाड़ भी, सूझ भी और थोड़ा सा उपदेश भी। देवता पर मीठा व्यंग, मनुष्य की महिमा पर विनम्र गर्व, फिर भी लगता है कि उपदेश है। उपदेशकों से द्विवेदी जी को प्रकृतिया चिढ़ है। उपदेशक वे नहीं है, फिर भी उपदेश देते हैं। दूसरे आलोचकों की तरह आदेश, निर्देश, भर्त्सना आदि का तो उनके यहाँ नितांत अभाव है। वस्तुतः काव्य चर्चा उनके लिए जीवन महोत्सव है, वे काव्य चर्चा नहीं करते, उत्सव मनाते हैं। मुक्त अकुंठ, एक एक शब्द की चीर फाड़ नहीं करते, सार्थक शब्द को निकालकर ऐसी जगह रख देते हैं कि अर्थ अपने आप जगमगा उठता है। शब्द की व्याख्या नहीं करते, उसे उपयुक्त संदर्भ देते हैं। यह संदर्भ ही उनका अपना सृजन है। वैसे कोई अर्थ गर्भ शब्द सामने आ जाए तो वे उसकी अर्थ छायाओं में भी जाते हैं और उनके आधार पर एक नए सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। मसलन मेघदूत के ही दूसरे छंद का सानु शब्द सानु पर्वत नितंब को कहते हैं। अब इस नितंब से लगा मेघ जैसे हाथी ढूसा मार रहा हो, यौन संकेत स्पष्ट है। द्विवेदी जी का सौंदर्योपासक मन एक संदर्भ देकर मौन रह जाता है। कभी कभी किसी शब्द के अर्थ को लेकर वे पुराने टीकाकारों से अलग जाने का भी साहस करते हैं, जैसे पूर्व मेघ के 55वें छंद में करण विगम। वे इसे करणों अथवा इंद्रियों का अन्य मुखीकरण मानते हैं, कोषगत अर्थ से उन्हें संतोष नहीं। वस्तुतः द्विवेदी जी की आलोचना में व्याख्या की भूमिका प्रधान नहीं है, प्रधान भूमिका है उद्धरणों के चयन की। प्रसंग के अनुकूल वे ऐसे उदाहरण चुनकर लाते हैं कि किसी अतिरिक्त युक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस कला के क्षेत्र में वे अप्रतिम आचार्य हैं। जाने किस संदर्भ का छंद उठाकर लाते हैं और ऐसे नए संदर्भ में रखते हैं कि संदेश के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रकार वे नए नए जीवन संदर्भों से कविता का अर्थ विस्तार करते हैं। अब कोई इस बात के लिए उन्हें आलोचक मानने से इनकार करे तो अपनी बला से। आलोचना उनके लिए विश्लेषण का पर्याय नहीं, परोपजीवी आलोचना के लिए हो तो हो। वे सर्जक हैं, कीर्ति हैं। दुष्यंत के समान उन्हें यह समझ जल्दी आ गई थी कि तत्वान्वेषी अभागे हैं। कृति तो वह भौरा है जो तत्वान्वेष के चक्कर में न पड़कर कानों कान रहस्य की बात कहने वाले ढीठ प्रेमी की भांति शकुंतला की भयभ्रांत व्याकुलता का भी रस लेता है। यदि आलोचकों को अपनी विडम्बनापूर्ण स्थिति का बोध होगा तो देर सवेर वे भी निश्चय ही यह कहने के लिए विवश होंगे कि वयम तत्वान्वेषान मधुकर हत्वास्तवम खलु कीर्ति।